अब रोज़े का मकसद बयान करने के बाद अल्लाह सुबहाना ताला कुछ मसाइल जो रोज़े के मुतल्लिक हैं उसकी बात करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन आयात को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि रोज़े के बारे में बुनियादी सवालात जो जहन में उठते हैं उनको पूरा कर सकें। क्योंकि अमूमन जब भी रमज़ान का महीना आता है तो सवालात जहन में उठते हैं, लोग पूछते हैं दूसरों से, फिर अमल कर लेते हैं, फिर अगले साल भूल चुके होते हैं। लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अब से बाद जब भी कोई रमज़ान आए तो हमें सिर्फ रमज़ान को ही उस सवाल का जवाब ढूंढना ना पड़े, रमज़ान के महीने में भी, बल्कि हमें उससे पहले आता हो। तो पीछे बात कर दी गई कि रोज़े का मकसद तकवा हासिल करना है, अब आगे थोड़ी सी तसल्ली दी जा रही है कि गम ना करो, घबराओ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान होने लगते हैं रमज़ान का सोच कर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अय्यामम मादूदात, गिनती के दिन हैं, क्यों फिक्र करते हो, गिने चुने तो दिन हैं। अगर इस लफ्ज़ पे गौर करें तो अय्यामम मादूदात, अय्याम यौम की जमा है और मादूदात मादूदतुन की जमा है। अय्याम का रूप तो वही है जो यौम का हम पीछे पढ़ चुके, या वाव मीम, और मादूदात का रूट है ऐन दाल दाल, अदद, उर्दू में बोलते हैं ना तादाद। गिनती के दिन हैं, गिने चुने दिन हैं, इसमें हुक्म भी है और तसल्ली भी है। अगर इन दो लफ्ज़ों को हम हुक्म के तौर पे देखें तो इससे मुराद क्या है कि अगर कोई रोज़ा छूट गया तो पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़े तो रखते हैं लेकिन अगर कभी कोई छूट जाए तो उसको दोबारा रखने का अहतमाम नहीं करते। गलतफहमी ख्वातीन को होती है जो पीरियड्स के दिनों में रोज़े छोड़ती हैं, फिर अगले साल तक कभी सोचा भी नहीं कि रखे थे कि नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अय्यामम मादूदात, गिनने हैं, गिन गिन के रखो। वैसे भी आप देखें तो लोग भी बहुत गिनते हैं ना, पहले रोज़े से शुरू होते हैं, एक हो गया, दो हो गए, हाँ तीन हो गए, दस तक हो गए कहते हैं, फिर जब 10 से ऊपर चलते हैं तो कहते हैं अब इतने रह गए। हाँ सबसे ज़्यादा गिना जाने वाला ये महीना है। और एक खातून है, मैं उनको जानती हूँ, वो कहती है कि लोग तो रोज़ा उस वक्त गिनते हैं जब हो जाता है, यानी इफ्तारी के वक्त लोग कहते हैं ना एक और हो गया। मैं जिस दिन सहरी पका लेती हूँ मैं कहती हूँ एक हो गया, क्योंकि उनको सहरी पकाना मुश्किल लगती है। तो हर एक की अपनी आदत है ना, कोई इफ्तारी के वक्त पे कहता है हो गया और एक कोई सहरी के वक्त में। लेकिन रोज़े का और गिनती का बड़ा गहरा ताल्लुक है। पहले ही लोग हरासा होते हैं, हाय रमज़ान आ रहे हैं, खौफ के मारे कुछ कुछ शौक के मारे लगे होते हैं, फिर आ जाएं तो भी गिनते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो रोज़े के दिन गिनने पड़ेंगे। और दूसरा इसके अंदर अय्याम मादूदात में तसल्ली है उन लोगों को जिनको रमज़ान का महीना बड़े ही मुश्किल लगता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि किसको रमज़ान का महीना मुश्किल लगता है और किसके लिए एक इंजॉयबल टाइम है। थोड़ी सी इस पर बात लअल्लकुम तत्तकून से मिलाते हुए करूँगी ताकि आप अपना अपना चेक कर सकें। अब देखिए कि दो मेयार अपने जहन में रखिए। जो शख्स रमज़ान के आते ही खौफ का शिकार हो जाए, उसको बार बार भूल लाहक हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ें, मसलन 5 वक्त की नमाज़ अब पढ़नी है क्योंकि रोज़े हैं, टीवी बंद कर दो रमज़ान है, गिबत करने लगता, फिर कहता नहीं तोबा तोबा भी तो रोज़े थे। यानी ये जो गलत फहमियाँ लगने लगती हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये शख्स अब रमज़ान में अपने ऊपर एक मसनूई खौलतारी कर रहा है। इसकी ज़िंदगी में, यानी आप कह सकते हैं कि दो किस्म के ईमान वाले होते हैं। एक ईमान वाले कहलवाने के बावजूद ईमान के तकाजे पूरे नहीं कर रहे होते। आप उसको मुनाफिक कहना चाहें तो कह लें, फासिक कहना चाहें कह लें। वैसे फासिकों को तो तौफीक ही कम होती है रोज़े रखने की, वो तो इसकी भी केयर नहीं करते कि रमज़ान है, वो अपने मामूलात वैसे ही जारी रखते हैं जैसे कि गैर रमज़ान के होते हैं। लेकिन इसके बरक्स एक सच्चा मोमिन, रमज़ान और गैर रमज़ान उसके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज़ें वैसे भी पढ़ता था ऐसे भी बढ़ेगा, झूठ से वैसे भी बचता था यूँ भी बचेगा, वक्त वैसे भी ज़ाया नहीं करता ऐसे भी ज़ाया नहीं करेगा, गुना और सवाब का ख्याल पहले भी रखता था, अब भी रखेगा। तो हम सब अपना अपना चेक कर सकते हैं कि जब रमज़ान आता है तो क्या मुझे हलफली मच जाती है, थरथली मच जाती है, बार बार घबरा घबरा के या चौंकती हूँ कि रोज़े आगे, या कहती नो प्रॉब्लम, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि बस अब रोज़ा होता है, वैसे दोपहर में खाना खाते थे वो नहीं खाएंगे। और सच पूछिए तो सच्चा मोमिन तो खाता भी दो ही दफ़ा है, वो हर वक्त जंग खाती नहीं होता कि मुंह में डाल दिया, ना बिस्मिल्लाह पढ़ी, ना ये पता कि दाएं हाथ से खाया कि बाएं हाथ से खाया। तो अल्लाह सुभान व तआला ने यहाँ तकवा की जो एक निशानी बता दी वो क्या है कि एक रमज़ान का महीना इंसान जब शऊर के साथ गुजार लेता है तो बाकी 11 महीने उसकी ज़िंदगी इस किस्म की हो जाती है कि रमज़ान आने पर उसको कोई घबराहट तारी नहीं होती, उस पर वो अपने आप को मुत्तकी समझता है। और अगर आप एक जुमला नोट कर लें, आपको अपने लिए बहुत ही मदद मिलेगी, और वो क्या कि मोमिन की तो सारी ज़िंदगी ही रोज़ा है। एक महीना हकीकी रोज़ा है जो कि वाकई रमज़ान की सूरत में हम रखते हैं, और 11 महीने मानवी रोज़ा है। गीबत से वो रोज़ा रखता है, जिना से वो रोज़ा रखता है, वक्त ज़ाया करने से वो रोज़ा रखता है, अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों से वो अपने आप को दूर से दूर करता जाता है, उसको तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा गिनती के चंद दिन हैं, इनको गुजार लो, अल्लाह ताला तुम्हारे इसी दिन इन्हीं दिनों के अंदर बहुत ही खैर डाल देगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हुई, अगला हिस्सा आज का देखते हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीदन, इसके ऊपर नंबर वन लगा लीजिए। नंबर वन यानी एक किस्म का एग्जेम्प्ट पर्सन, वो लोग जो रोज़े से अलग कर दिए जाते हैं, यानी जो रोज़ा छोड़ सकते हैं वो कौन हैं? नंबर एक जो के मरीज हों, नंबर दो अगले पे लगाइएगा औ अला सफ़रिन, या सफ़र में हों, मुसाफिर हों। ये कौन सा सफ़र है, मरीज़ कौन सा हो, इसको भी साथ साथ ही देखते जाते हैं। यानी जो लोग किस किस्म के बीमार हों कि जिसके अंदर बीमारी के बढ़ने का डर हो, ऐसा रोज़ा जिससे बीमारी के बढ़ने का डर हो। दूसरी सूरत यह है कि जिसमें दवाई खाने की ज़रूरत पेश आती है रोज़े के दौरान। फिर तीसरी चीज़ इसमें यह आती है कि ऐसा मरीज़ कि जिसको ये उम्मीद है कि अगर आज मैंने रोज़ा नहीं रखा तो कल का रोज़ा ज़्यादा अच्छी तरह रख सकूँगा, तो फिर अगर वो उस दिन रोज़ा ना रखे कोई हर्ज की बात। जनरल असूल बुनियादी बातें लिख लें, फिर कुछ बातें एंड पे रैंडमली हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो कौन सा मरीज़ छोड़ सकता है रोज़ा, जिसका जिसकी उंगली में कट लग गया है, रोज़ा छोड़ देते हैं भाई कट लग चुका है, हैं पाँव का अंगूठे का नाखून ज़्यादा कट गया था तो बस रोज़ा छोड़ देते हैं, नहीं। फमन का न मिनकुम मरीदन, अगर आप अरबी लैंग्वेज देखें ना तो मरस जो होता है ये बीमारी का काफ़ी अगला हिस्सा होता है, कई दर्जे आपको सूरह यूसुफ़ में जाके इंशाल्लाह लिखा दूंगी अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, तो मरीज़ यानी ऐसा मरीज़ के जो रोज़ा रख नहीं सकता या रखने में कबाहत है तो फिर क्या है, रोज़ा छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन अय्याम मादूदात वाली बात इस पर लगा लें कि उसको दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है औ अला सफ़रिन, सफ़र पे है। इसमें भी बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे जहनों में, किस सफ़र में छोड़ें किस पे ना छोड़ें। बाज़ कहते हैं जी पहले दौर में सफ़र बड़े मुश्किल थे, पैदल जाना पड़ता था, घोड़ों पे और ऊँटों पे चलते थे तो थी अरब नहीं छोड़ सकते। हालांकि इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें जो चीज़ मिलती है, अहादीस अगर कोट करवाऊँ तो जितनी बातें बोल रही हूँ ये उन्हीं का एक्सट्रैक्ट है कि नबी सल्लम सफ़र में रोज़ा रख भी लिया करते थे। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ मैं सफ़र में था और आप रोज़े से थे, लेकिन कभी नहीं भी रखते थे। आपकी मर्ज़ी है रखें, आपकी मर्ज़ी है ना रखें, शर्त ये कि आपने बाद में वो पूरा करना है। कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि अब तो एक माहौल बना हुआ है, सभी रख रहे हैं, रख लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जहाज़ में जा रहे हैं, कोई हरज नहीं, आप रख लीजिए। कोई कहता है नहीं, सफ़र में मकसद एक होता है और किसी मकाम से ही जाना होता है, तो रोज़ा रख लिया तो हो सकता है वो काम पूरा ना हो तो मैं छोड़ देती हूँ, तो छोड़ दीजिए। ना तो इसका ताल्लुक़ कोई जहाज़ के सफ़र और घोड़े टांगे के सफ़र से है, याद रखिएगा, ना बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क का फ़र्क है, बल्कि बाज़ औक़ात तो सफ़र में ना रखना ज़्यादा बेहतर होता है। कब? जब हमारे रोज़े की वजह से दूसरे परेशान हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे सफ़र में थे, आपके साथ दूसरे साथी थे, तो आपने देखा कि एक शख्स है वो दरख्त के नीचे लेटा हुआ और सब लोग उसको, वो पंखा चल रहे हैं, कोई उसकी खिदमत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पूछा भाई क्या हुआ? तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रोज़ा है और रोज़े की वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है और हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि आज इन लोगों ने रोज़ा ना रख के इससे ज़्यादा अजर पा लिया, क्योंकि उसकी खिदमत करते रहे ना। तो लिहाजा अगर कोई ऐसी कैफियत हो जाए तो रोज़ा छोड़ने में हर्ज नहीं। बस अब ऐसा होता है कि रोज़े के इफ्तार और सहरी के टाइमिंग डिस्टर्ब होते हैं। बस अगर आप यहाँ से अमेरिका चले जाएँ तो आप देखेंगे कि जूँ जूँ आप आगे जाते जाएंगे दिन छोटा होता जाएगा। बाज़ औक़ात आपने सुबह के वक्त रोज़ा रख के जहाज़ में बैठे होंगे, जब आप अमेरिका में पहुँचेंगे फिर वहाँ सुबह ही होगी, फिर आपके मज़ीद 8-10 घंटे बढ़ेंगे, तो आपका रोज़ा हो सकता है कि 24 घंटे के करीब पहुँच जाए। उधर से आप इधर आते हैं तो आपका इफ्तारी का टाइम बदलता है। तो दीन एक बिल्कुल बिग सिनेरियो में देखने वाली चीज़ है। हर बंदा अपने हिसाब के मुताबिक जैसा करना चाहे कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम बात है कि छोड़ा है तो रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी इस नाते से हम इतनी सी देख के आगे चलते हैं। फरमाया ये छोड़ दे, फ़ैदत में नैया में नखर, गिनती पूरी करे दूसरे दिनों में। दूसरे दिन कौन से होंगे? जब रमज़ान गुजर जाएगा। या फिर समझ लीजिए कि रमज़ान का एक रोज़ा आपने छोड़ा, मसलन कल 10वां रोज़ा है, आप सफ़र में थी, आपने छोड़ दिया, आप पहुंच गई जहां पहुंचना था, अब अगले दिन 11वां रोज़ा है ना, अब आप क्या करेंगे? उस 10वें का की कज़ा रखनी शुरू कर देंगे? नहीं, उसके बाद 11 से 30 या 29 तक दिन पूरे कीजिए, पूरे कर लें। जूँ ही ख़त्म हो, ईद का दिन हो जाए, उसके बाद आप चाहें तो अगले दिन रख लें, चाहे तो उससे अगले साल तक रख लें। इसी तरह पीरियड्स के दिनों में जो रोज़े छूटते हैं उसके लिए भी यही हुक्म है कि जब भी किसी औरत, लड़की को, बच्ची को, जिसको भी पीरियड्स होते हैं, जूँ ही पीरियड्स का वक्त उसका शुरू हो, दिन का कोई भी हिस्सा हो सकता है, सुबह से लेकर शाम यानी मगरिब तक के बीच में किसी वक्त भी पीरियड शुरू होते हैं, अगर वो पहले से रोज़े से थी वो फिर पूरे शौक़ के साथ रोज़ा खोल सकती हैं। हमारे यहाँ इस बारे में कुछ बड़ी ही खुद साख्ता किस्म की बातें मशहूर की गई हैं। मसलन 12 बजे के बाद पीरियड शुरू हो तो आप रोज़ा नहीं तोड़े, और कुछ कहते हैं कि जी वो पाक तो हो गए हैं लेकिन अभी ये वजह है इसलिए रोज़ा रख ही नहीं रहे। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप सबके फ़ायदे की है, इसको गौर से सुन लीजिए कि आप रोज़े से थीं, आज 10वां रोज़ा है बिलफर्ज़, आप रोज़ा रख के सोईं, सहरी खाई, सब कुछ किया, जोहर पढ़ी नहीं पढ़ी, असर के वक्त आपने चेक किया पीरियड्स आ चुके थे, आप पूरे शौक से रोज़ा खोल लें, आपको अल्लाह अजर देगा। अगर आपका जोहर इवन मगरिब से पहले अगर आपने चेक कर लिया, आप 2 मिनट पहले खोल लें, अल्लाह आपको अजर देगा, लेकिन उस रोज़े की कज़ा आपको बाद में रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये इंतहा है हमारे यहाँ कि रोज़ा पीरियड्स हो जाते हैं और रोज़ा खोलते नहीं हैं लोग। दूसरी एक और इंतहा भी है, पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, आप 5-6 दिन जो आपकी आदत थी पूरे कर चुकी हैं, अब क्या मसला जी? वो अभी ये नहीं किया। बस लोगों ने खुद साख्ता चीज़ें रखी हुई हैं, कोई कहता है अभी सफाई नहीं की, कोई कहता है अभी और ज़रा पाक हो ले, अभी और डिले करते रहे, नहीं, आप को लगता है कि आज रात आपका आखिरी दिन है पीरियड्स के पाक होने का, आप सहरी में उठें दूसरों के साथ, अपने आप को चेक करें, सहाबियात भी चेक करती थी, आप कॉटन से देखें, अगर आपके जिस्म से बिल्कुल खून की या पिलाहट या ब्राउनिश चीज़ जो है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, आप वज़ू करें, सहरी खाएं, सबके साथ खाएं, सहरी के बाद आप पीरियड्स का गुसल करें, फजर की नमाज़ पढ़ें और आपका वो रोज़ा शुरू हो जाएगा। जिस तरह पीरियड्स होने पे छोड़ना नहीं है यानी रखना नहीं है, इसी तरह पीरियड्स ख़त्म होने पे बिला वजह डिले नहीं करना, अभी नहाए नहीं, अभी ये नहीं, अभी शैम्पू नहीं आया, वो नहीं आया, जितनी नमाज़ें और अगर पूरा रोज़ा ज़ाया होता है तो ये गुनाह में शामिल होगा। इसलिए जब भी पीरियड से पाक होंगे तो वो सारी नमाज़ें भी अदा करेंगे जो सिर्फ अपनी सुस्तियों की वजह से हम छोड़ देते हैं। और अगली एक आध सबक के बाद पीरियड्स के मसाइल पे बात होगी और इंशाल्लाह आप किताबो तहारा में भी ये मसाइल सीखेंगे, लेकिन यहाँ बस सिर्फ रोज़े की हद तक इसको रख लेते हैं कि कुछ किस्म के रोज़े छोड़ने ऐसे होते हैं कि जिसके बाद आपको रखने पड़ते हैं और उसका कफ़ारा कोई नहीं है, उसमें ये सारे हैं। बस आपने सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ा था, कोई कफ़ारा नहीं इसका, मतलब कोई इसका फ़िदिया नहीं है, बस आपको बाद में एक रोज़ा रखना है। आप बीमार हो गई, बुखार हुआ, खांसी हुई, ज़ुकाम हुई, रोज़ा छोड़ा, कोई इसका फ़दिया नहीं है, बस आपने इसका कफ़ारा अदा करना है। और लफ्ज़ कफ़ारा क्या आता है? ढांप देने वाला, हमारी उस गलती को वो चीज़ ढांप देती है। पीरियड्स के रोज़े छूटे, कोई फ़दिया नहीं है, कफ़ारा है उसको पूरा करने का। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें सेहत की उम्मीद नहीं होती, मसलन किसी को शुगर है, अब कहते हैं कि ये हो जाए तो जाती नहीं, मिसाल है, या हार्ट पेशेंट कोई हो गया, डॉक्टर्स ने कहा ये सारी ज़िंदगी रोज़े नहीं रख सकता। पहली बात यह है कि कभी डॉक्टर्स की बात को वही की बात ना समझा करें। मैं ऐसे ऐसे साथियों को जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कई बीमारियों का शिकार है और कई साल से रोज़े नहीं रख रहे थे। इस साल जब हम इस कोर्स में ही थे तो रोज़ों की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम ट्राई करेंगे और उन्होंने पूरे रख लिए। कह रही हैरत है कि हमने इतने साल से सिर्फ इस संदेशे के तहत नहीं रखे हुए थे कि रख लिया तो कुछ हमें हो ना जाए। मुझसे उन्होंने पूछा था मसला, मैंने कहा आप इस नीयत से रोज़ा रखें सहरी में कि आप रखें और अल्लाह ताला से कहें कि एनी टाइम दिन में हमें कहीं भी फील हुआ कि दिल घबरा रहा है या शुगर डाउन हो रही है या ब्लड प्रेशर लो रहा है तो खोल लूँगी। कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे रख ले। मैंने कहा आप बिल्कुल आप रखें और दिन के किसी हिस्से में भी आप खोल सकती हैं जो ही आपको महसूस हो कि आपको कुछ हो रहा है। यकीन करें एक भी रोज़ा उनको खोलने की नौबत नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि बंदा काम करना चाहे तो अल्लाह ताला उसको तौफीक ना दे। तो वो इतनी खुश हैं इस बात पे कि मेरा इतने साल से रोज़े सिर्फ अंदेशे से छूटते थे। और आप देखिए कि दिल में गिल्ट तो रहता ही है ना, सारे घर वाले रोज़े से और आप खामखा मिस्कीन बने बैठे हैं। और अमूमन ये जो बीमारियाँ होती हैं शुगर की या ब्लड प्रेशर की या कुछ टेंशन की, ये हर वक्त थोड़ी रहती हैं। बंदा आम खाता पीता चलता फिरता है लेकिन रोज़े के वक्त में आप बीमार हैं। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं उनको ये जी हम भूखे रहे तो हमें माइग्रेन का पेन होता है, सर में दर्द एक होता है आधे सर का, तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे। ऐसे तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अल्लाह के भरोसे पे सहरी में उठ के रखें, नियत करें। दिन में जिस वक्त आपको फील होने लगे ना कि बीमारी शुरू हो जाएगी या कुछ होने लगे, फौरन पूरे शऊर से खोल दें और खोल दें। और बाद में आपको लग रहा कि नहीं रख सकते तो ऐसे मरीज़ जिनको लगता है कि आप कभी नहीं रख सकेंगे, उनके लिए क्या है कि वो एक रोज़े का फ़दिया दे दें। फ़दिया क्या होता है? एक मिस्कीन का खाना, एक वक्त का खाना, जो आप खाते हैं वही खिलाएंगे। जहां आप रहते हैं वहीं के खाने का हिसाब लगा लें। आप नॉर्वे में रहते हैं, आप नॉर्वे में एक वक्त का खाना जो आम तौर पर खाते हैं, कोई उसमें ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त बाहर का खाना खाएं या घर का खाएं, औसत दर्जे का एक खाना यहाँ किसी गरीब को खिला दें, पाकिस्तान में खिला दें, कोई हरज की बात नहीं। चावल खाते हैं चावलों का हिसाब लगा लें, रोटी खाते हैं रोटी का खिला लें, एक वक्त का खाना मिस्किन को खिलाना है। इकट्ठा सारा खिला दें, आपको लगता है कि मैं रोज़े नहीं रख पाऊँगी, इसमें तीसरी एक और चीज़ भी ऐड कर लें, जैसे प्रेगनेंसी होती है, औरत हामिला है, अब उसको डर है या डॉक्टर मना करता है कि बच्चे को नुकसान हो सकता है, यही सूरत है, इसमें अंदेशा है कि रख भी सकती हूँ नहीं भी रख सकती, तो क्या करें, पूरे 30 दिनों का फ़दिया बना के 30 मिस्कीनों को खाना क्या मुश्किल होगा। हम तो एक दावत पकाते हैं तो 40-50 लोगों का खाना बेहतरीन किस्म का पका लेते हैं, तो 30 मिस्कीनों को खाना खिलाना क्या मुश्किल है। इंसान फ़दिया भी दे दे लेकिन साथ ही साथ नियत करे कि अल्लाह ताला मैं रख लूँगी, जो मैं रख सकी रख लूँगी। अगर कुछ फ़दिया दे चुके हैं और रोज़ा भी रख लिया तो क्या हर्ज है, अल्लाह के रास्ते में तो गया ना। फिर इसी तरह बूढ़ा शख्स, बिल्कुल जिसको आप उधेड़ उम्र कहते हैं कि जिसके बाद अब ज़ाहिर जवानी तो आनी नहीं है, अब इसको भी पता है कि अगर मेरे रोज़े छूट रहे हैं और मैं बाकी दोबारा नहीं रख सकता तो फिर उसका भी फ़दिया दिया जाएगा। कफ़ारा ना भी दे सके तो फ़दिया होगा। हत्ता के हदीस में आता है कि जो शख्स मर जाए मम मात व अलैहि सियामुहू, कि जो मर जाए और उसके ज़िम्मे कुछ फ़र्ज़ रोज़े हों तो फिर उसका वली उसके रोज़े रखेगा। हमारे यहाँ ये बात तो बड़ी मारूफ है कि जो नमाज़ें छूट जाती हैं तो उसको तो कज़ा उम्री के तौर पे रखो और पढ़ो, और वो भी एक मुसलसल यानी पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को रोज़ों के बारे में परेशान देखा। हमारा कोई फौत हो जाता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम चेक करें उनके को रोज़े तो नहीं बीमारी में छूटे, कोई उनकी वजह से ज़िंदगी के, जवानी के, प्रेगनेंसी के, फिर नर्सिंग मदर जो होती हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं 2 साल का अरसा होता है, उसमें भी अगर औरत रोज़े ना रख सके, बच्चे की कमज़ोरी का मसला कुछ भी, तो वो भी फ़दिया दे दे, लेकिन उसमें फिर बाद में कफ़ारा भी अदा करना होगा। तो ये 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं जिसके मुताबिक ये बात आ गई कि फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, दोबारा देना होगा। अब आप मिसाल लें कि एक औरत प्रेगनेंट है, इस साल के रोज़े उसके चले गए प्रेगनेंसी की वजह से, अगले साल उसका बच्चा उसकी गोद में होगा, वो दूध पी रहा होगा, वो नर्सिंग मदर है। अब दो अगले साल के रोज़े छुट गए उसके बच्चे को दूध पिलाने की वजह से, 30 30 30 90 रोज़े ये हो गए। चौथे साल में हो सकते वो फिर प्रेग्नेंट हो, पॉसिबल है ना, फितरत का असूल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों में फिर क्या है कि अगर रोज़े छुटे में तो कफ़ारा दे दिया जाए, फिदिया दे दिया जाए, और जिस तरह मुमकिन तरीके से रोज़ों को साथ साथ मेकअप किया जा सके उसको किया जा सकता है। ठीक है, चले ये छोटे छोटे मसाइल हैं, कुछ चीज़ें बाद में आपके सवालों की सूरत में भी आगे आएंगी। चले अब यहाँ तक तो बात पूरी हुई, मैं चाहती हूँ कि इस आयत में आप भटकें ना, क्योंकि लंबी आयतों में जहन भटक जाता है। अब अगला हिस्सा मैं शुरू करूँगी, इसको ज़रा गौर से आप समझेंगे, क्योंकि इसकी तफसीर में आपको इस आयत की शान नज़ुल भी समझ आएगी। अगला हुक्म है وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, और उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं इसकी। يُطِيقُونَهُ का लफ्ज़ तोए वाव काफ से है, कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं इसकी, यानी जो रोज़ा रख सकते हैं, तो क्या करें, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, तो फ़िदिया दे दें एक मिस्कीन के खाने को, यानी एक मिस्कीन को खाना खिला दें। एक स्ट्रेच में इसको पढ़ती हूँ तो आप सबको क्या बात पता चली, कि वो लोग भी जो रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं फिर भी एक मिस्कीन को खाना खिला दें। हाँ, ये क्या बात हुई, जहन में तो ये आता है कि जो रोज़ा नहीं रख सकते वो मिस्कीन को खाना खिलाए ना। तो इस हिस्से की तफसीर दो तरह से है। पहली बात यह है कि इस्लाम का मिजाज तदरीज का है, ग्रेजुअलिटी। हम मानन सख मिन आयतिन में पढ़ चुके कि दीन इस्लाम में जो भी अहकाम हमें मिले हैं ये स्टेप बाय स्टेप मिले हैं। पीछे बात हुई थी ना इस पर कि शराब तीन स्टेप्स में हराम हुई थी, सूद कहाँ जाके चौथी आयत पे आके हराम हुआ था, इसी तरह रोज़ा जो था वो एक ही दम फर्ज नहीं हो गया था। हमने पहली आयत के साथ शुरू में बात की थी कि शुरू में तीन रोज़े थे, नबी मुफसरीन कहते हैं कि शुरू में सिर्फ एक इख्तियार दिया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि पूरे महीने में कभी भी तीन रोज़े रख लो, दैट्स इट। फिर एक ऐसी भी स्टेज गुजरी कि मुहर्रम के जो रोज़े थे, जो 9 और 10 या शुरू के दिन जो होते मुहर्रम के, ये रोज़े रखने लाजमी होते थे। लेकिन इसमें फिर होता क्या था कि बस दफ़ा च्वाइस दे दी जाती थी, अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बात दे दी कि शुरू में जब रोज़े फ़र्ज हुए थे तो कहा कि रोज़ा रख भी सकते हो तो फिर भी रख लो, फिदिया तो ताम हो मिस्कीन, किसी को खाना खिला दो तो भी अलाउड है। मैं आपको मिसाल देती हूँ आजकल के हालात, जैसे अब रमज़ान आता है, हम सब के ऊपर आम हालात में 30 रोज़े फ़र्ज हो जाते हैं ना, 29 या 30। अब तो क्या है कि हमें रखने ही रखने हैं, लेकिन इब्तदाए इस्लाम में हुक्म क्या था कि रोज़े आ रहे हैं रख सकते हो, युतीकूना हो रख सकते हो, मुश्किल से रख सकते हो, मुशक्क़त से रखते हो, तुम्हें बोझ पड़ता है, क्योंकि बाकी 11 महीने जब कभी रोज़ा चखा ही नहीं होता तो फिर तो रमज़ान के महीने में ब्लड प्रेशर लो होना ही होना है, फिर तो सर में दर्द होनी है। जो लोग रोज़े से डरते हैं उनको ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कसरत से हमारे अमल में रहती है हमारे दिल से उसका खौफ निकल जाता है। तो अब तो ये चॉइस नहीं है कि रोज़ा नहीं रखो तुम किसी गरीब को खिला दो, वरना तो होगा क्या कि सारे अमीरों के रोज़े उनके गरीब नौकरी रख रहे होते हैं और साथ काम भी कर रहे होते हैं उनका, ऐसे ही है ना। अब नहीं रख सकते, लेकिन इब्तदा में माइंड सेटिंग के लिए, खौफ और हरास ख़त्म करने के लिए, और चूँकि अरबों में नबी कोई नहीं उधर आया था तो वो खौफजदा थे रमज़ान से, तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बात नहीं, युतीकूना हो फिदियतुन तामो मिस्किन, अच्छा रखना चाहो रख लो, नहीं तो किसी और को रखा दो। कुछ अर्सा ऐसा हुक्म चलता रहा, जब लोग इसके यूज़ टू हो गए, उनको लगा कि वाकई हमारे लिए आसान है, तो ये फिर हुक्म उठा लिया गया, अब फ़र्ज़ कर दिए गए। एक इसकी तफसीर ये होती है। दूसरी तफसीर इसकी क्या है कि वअलल्लज़ीना के बाद ला का लफ्ज़ महज़ूफ़ है, यानी मानी इसमें क्या बन रहा है कि वो लोग जो ताकत नहीं रखते तो वो फ़िदिया दे दें एक मिस्कीन को खाने का, तो वो भी ठीक है। तो बहरहाल दोनों बातें बहुत ही आसान है, अल्लाह ताला ने ये बीच का हुक्म हमें दे दिया कि कुदरत नहीं रखते तो भी किसी को खिला दो, और अगर रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन याद रखो फ़मन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, जो कोई खुशी से नेकी करेगा भलाई करेगा तो उसके लिए यही बेहतर है, इशारा है इसमें कि गो के चॉइस दी जा रही है कि दूसरे को खिला दो, खुद ना रखो, लेकिन खुद रखोगे तो बेहतर है। क्यों? जितनी हम बिलीव करते हैं ना किसी भी नेकी में, उतना ही उसका अजर ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ यही एक खूबसूरत असूल बता दिया कि सिर्फ मजबूरियों के सौदे ना किया करो, जो काम खुशी से करोगे अल्लाह ताला उसका अजर देगा। यहाँ देखिए कि तबीयतों का फ़र्क होता है। कुछ लोगों को रोज़ा रखना मुश्किल नहीं लगता, फितरी तौर पे उनको भूख कम लगती है, जिस्मानी ज़रूरियात कम होती हैं, कुछ को मुश्किल लगता है। हो सकता है आप लोगों में भी ऐसी कुछ लोग हों। तो जो बंदा मुश्किल के बावजूद भी रखेगा ना, उसको इंशाअल्लाह ताला अजर ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह ताला बहुत कदरदान है। हम दुनिया में अपने ऊपर मिसाल लेके समझ सकते हैं कि कभी कोई हमारे लिए कोई मुश्किल सहे तो क्या हमें खुशी होती है उसकी उस मुश्किल पे। आपकी वजह से कोई बंदा 2-3 घंटे कहीं इधर उधर गुजार के आए करे तो आपको कितनी कदर होगी। आप बार बार कहेंगे हाय मेरी वजह से आप इतना घूमी, मेरी वजह से आपने इतनी ड्राइविंग की, मुझे आप यहाँ ले गई वहाँ ले गई। तो आप ज़रा सोचिए कि जब बंदा अल्लाह ताला के लिए कोई काम करता है, उससे उसकी खुशी के लिए करता है, तो फिर उसको अल्लाह ताला कितना अजर देगा। लिहाजा सहाबा कराम में कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो दुआ किया करते थे कि अल्लाह गर्मियों के रोज़े आए और हम रोज़े रखें। ये इंसान की मोहब्बत है। आप देखिए कि हर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है ना। आपको जिससे जितनी मोहब्बत होती है आप उसके लिए उतनी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। जितनी हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी ना, तो मुश्किल वक्तों में हम नेकी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि खुशियाँ मनाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुश्किल दे दी और हम उस पर पूरे उतरे। इन कुंतुम तालमून वन तसूमू खैरुल लकुम, और अगर तुम रोज़ा रखोगे तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यहाँ आप देखिए कि अल्लाह ताला ने रोज़े को हमारे लिए बेहतर कहा। एक तो यहाँ टेक्स्ट के साथ बात चल रही है ना, दूसरी यहाँ से एक इशारा मिलता है, और वो क्या कि बज़ाहर लोग रोज़े को कितना ही मुश्किल क्यों ना समझें, लेकिन रोज़ा हमारे जिस्म के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इस पर एक पूरा टॉपिक है कि रोज़े के बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। आप आज की साइंस को खोल के देख लें, आज के रूहानी मुआलजीन को के पास जाके देखें, बहुत सारी बीमारियों का इलाज रोज़ा रख के करवाया जाता है। कैसे बेहतर है। मसाल देखे ना, एक पतीली हर वक्त ही चूल्हे पे चढ़ी रहती है, और अभी पकाया फिर और डाला, पकाया और डाला, तो वो तो खुद ही जल जाएगी ना। जब हमारा मैदा हर वक्त भरा रहता है ना, एक गर्म चीज़ खाई, फिर ठंडी खाई, फिर मीठी खाई, अब नमकीन खाई, अब मिर्चें लग गई, अब मीठा ठंडा, तो फिर वो मैदा जो है वो उसकी वॉल्स वीक हो जाती हैं। हर वक्त वो उसके जो मसल्स हैं वो हरकत में रहते हैं, ताकि जो खाना उसमें उसको हजम करें। कुछ अरसा उसको हम खाली रखते हैं ना, तो ये असल में उसका रेस्ट है, और हर जिस्म के हिस्से को रेस्ट चाहिए होता है। तो लिहाजा जब मैदा बिल्कुल खाली होता है, उससे स्टमक की एनर्जी कम हो जाती है, यानी एनर्जी उसको कम लेनी पड़ती है। फिर दूसरा एक और फ़ायदा होता है कि जब हमारा मैदा बिल्कुल खाली होता है ना, तो जिस्म के अंदर जितने भी रुके हुए मादे होते हैं ना, डिपॉजिट्स जिसको आप आज की ज़ुबान में कह सकते हैं, वो सब यूटिलाइज होते हैं फैट की सूरत में, जो हमारे जिस्म में बनी होती हैं। क्योंकि खाए हुए पे खाते जाते हैं ना, तो वो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें फैट की सूरत में प्रिजर्व होती जाती हैं। जब हम रोज़े की हालत में 10-8-10 घंटे कुछ नहीं खाते, तो वो चीज़ें निकलती हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म का काम बहुत तेज़ी से होता है। और इस पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह आपको ईमेल में वो भेज देंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं रोज़े के जिस्मानी तौर पर। चलिए आप ज़रा थोड़े से घरेलू तौर पे इसके बेनिफिट्स भी देख लें। आप में से जो ख़वातीन हैं वो तो बहुत ही खुश होंगी, सारा दिन चूल्हा ही नहीं खोलना पड़ता है। हमारे घरों में तो एक ऐसी आदत पड़ गई मुझे लगता है, और शर्म आती है, एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है ऐसे लफ्ज़ों पे, नदीदापन। अच्छा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जैसे हर वक्त ही खाने पर नज़रें नहीं होती। ख़ास तौर पर जब हम अपने कल्चर में निकलते हैं, अपने मुल्कों में होते हैं, अपने ही जैसे लोगों में होते हैं, तो जाके बैठेंगे नहीं, क्या खाएंगे, पूछते भी नहीं ले आएंगे, अब ये खाए, अब ठंडा, अब दोपहर का खाना, अब शाम की चाय, अब स्नैक्स, रात का खाना खा लिया, अब क्या, अब टिक्के खाने जा रहे हैं, अब टिक्के खा लिए, अब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, अब आइसक्रीम खा लिया, अब पान खाने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं सबज चाय पीने, फजर के वक्त लोग घर आए। आप सोचिए, शर्म नहीं आती। जब कौमें बिल्कुल आप कह दें कि परवर्टेड हो जाती हैं ना, तो उनकी सारी एनर्जीज खाना खाने खिलाने पीने पे लगती हैं। एक कॉमन वुमेन का अगर आप टाइम देखें, तो उसके दिन का आधे से ज़्यादा वक्त जो है ना वो या तो खाना पकाने में, सर्विंग में, फिर बर्तन धोने में, फिर उसका ट्रैश उठाने में, फिर किचन की सफाई में, उतने में चाय का वक्त आ जाता है। फिर चाय पतीली निकाली, फिर उतने मैचिंग कप, उतनी प्लेटें, अब उसके साथ फिर कोई समोसे जलेबियाँ, वो समेटा, उतना ही ट्रैश से ज़्यादा, उतना ही। फिर आप देखें जितना खाते हैं टॉयलेट उतना यूज़ करेंगे, टॉयलेट यूज़ होगा तो टॉयलेट गंदे होंगे, फिर वहाँ आप सोचेंगे तो टॉयलेट पेपर आपका एक्स्ट्रा यूज़ होगा, आपका पानी वहाँ ज़्यादा लगेगा। एक खाने की वजह से फिर आप देखेंगे कपड़े और इस्तेमाल होंगे। आप फील करके देखें, जितना खाना ज़्यादा और हर वक्त खाते हैं उतने हम बिज़ी भी रहते हैं, उतने हम गंदे भी रहते हैं, और उतना ही ज़्यादा हमारा जो यानी घर की मशगूलियत हर वक्त इसी में रहती है। बड़ी शर्म आती है वैसे अब मुझे बताते हुए, लेकिन पहले तो कभी महसूस ही नहीं करते। खाने पे बैठे होते हैं, मेहमान खा रहा है, बस आए तो उन्होंने खाना खा रहे थे या खाने लगे, तो इन्हें ऑफ़र की कि हमारे साथ खाना, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खा के आया हूँ ना। इन्होंने कहा नहीं, आप खाएँ साथ, थोड़ा सा साथ खाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो बिल्कुल इतनी भी जगह नहीं है खाने की। तो ये जो उनके होस्ट थे उन्होंने कहा कि वैसे बाय द वे आपको बताऊं कि मोमिन इतना नहीं खाता कि उसके अंदर इतनी भी जगह ना हो खाने की। और वो उनके दोस्त आज तक इस बात को याद करते हैं कि मुझे तो आप मेरे दोस्त ने शर्मिंदा कर दिया ये बात सोच के। हम तो तब छोड़ते हैं खाना जब यहाँ तक उंगली आ चुकी हो, कि अब लगता है कि अब बल्कि वो ज़्यादा खा लें तो फिर और कहवा पीते हैं कि अब इसको हज़म कर लें हम। मेरा लिए वाहद वो कौम है जो खाने को हज़म करने के लिए फिर सोडा पीते हैं, फिर सेवन अप पीते हैं, थोड़ी सी जगह बनती है, सांस आने लगता है, फिर कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। फिर आप देखिए कि रोज़े के बेनिफिट्स इन कुंतुम तालमून को अगर हम एक थर्ड एंगल में देखें कि स्पिरिचुअली रोज़ा हमें क्या देता है। पीछे भी बात हुई थी, आगे फिर बहुत जगह होगी कि हमारा जिस्म जो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक जिस्म और एक रूह। इस वक्त हम सब एक दूसरे का क्या देख रहे हैं? जिस्म देख रहे हैं ना, हमारी रूहें हमारे अंदर हैं। हमारा जो जिस्म है ना, इसको परवरिश देने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, खाने पीने की ज़रूरत होती है। बस माँ को अपने बच्चे के खाने पीने की कितनी फिक्र होती है, इसका वज़न कम हो गया है, इसके नाखून सफ़ेद हो रहे हैं, इसकी आंखों के अंदर पिलाहट आ रही है, अब इसमें प्रोटीन की कमी, अब कार्बोनेट की कमी, अब इसमें कैल्शियम की कमी, कमी 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 करके आप किस चीज़ की उसको, मतलब किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं? अपने बच्चे के जिस्म को। हम सारी ज़िंदगी अगर सिर्फ इस जिस्म के तकाजे पूरे करते हैं ना, तो उसका लामहाला एक नतीजा होता है कि दूसरा खाना जो हमारी रूह का होता है वो पीछे रह जाता है। हम रमज़ान को अगर देखें, जो अगली आयत अब हम पढ़ने वाले हैं, बड़ी ही खूबसूरत आयत है, और मेरा ख्याल है कि अगर इसको हम समझ जाते हैं तो फिर ना तो हमें खाने पीने से रुकना मुश्किल लगेगा और ना दूसरी चीज़ों से। लेकिन ये हकीकत है, हम जब हर वक्त अपने और अपने बच्चों को के सिर्फ खाने पीने की फ़िक्र करते रहते हैं ना, तो जिस्म तो खूब मोटे हो जाते हैं लेकिन रूह भूखी रहती है। रूह को भूखा रखना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोज़िट हैं। अगर आगे जाके इंशाल्लाह जब हम 13वें पारे की पहली आयत में जाएंगे, वहाँ थोड़ी सी मज़ीद डिटेल बताऊंगी, लेकिन आप ये कह लीजिए कि जब हम जिस्म के तकाजे ज़्यादा पूरे करने लगते हैं ना, जो हमारा नफ्स है, तो हमारी रूह भूखी रह जाती है। असूलन जो खूबसूरत बांट है ना, वो क्या होती है कि आपकी का जिस्म और आपकी रूह दोनों आपके काबू में हो। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, शायद बात आसानी से समझाऊँ। कभी किसी ने टांगा देखा है? बग्गी देखी होगी, पीछे एक वो लकड़ी का छक्का सा होता है जिसमें बैठने की जगह। आप इमेजिन करें कि दो घोड़े हैं, एक सफ़ेद रंग का घोड़ा और एक ब्राउन रंग का या काले रंग का घोड़ा। इन दोनों घोड़ों ने उस बग्गी को खींचना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों घोड़े बराबर चलेंगे, सेहतमंद होंगे, तभी चलेगी ना, ठीक है। अगर इनमें से एक घोड़े को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें और एक बिल्कुल मरियल हो, सीधा नहीं चलेगी ना आपकी बग्गी। इसी तरह अगर एक बहुत तेज़ कदम भरे, दूसरा बिल्कुल ही बैठ जाए, तो भी नहीं चलेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे इस जिस्म के कैरियर को लेके जाने के लिए दो घोड़े हैं, एक इस जिस्म का घोड़ा और एक हमारी रूह का घोड़ा। हम जब जिस्म के घोड़े को खूब खिलाते पिलाते हैं, ये खूब मोटा चौड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी रूह अंदर भूखी होती है ना, तो हमारा जिस्म कमज़ोर होता है। आज जितनी भी साइकोलॉजिकल बीमारियां आपको दिखती हैं इर्द गिर्द, टेंशन, डिप्रेशन, फिर पता नहीं क्या क्या तकलीफ दे किस्म की बीमारियां आपको दिखती हैं। आज के दौर में जितनी रूहानी बीमारियां हैं उतनी जिस्मानी नहीं हैं। और दूसरी तरफ देखें कि जो लोग अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे खाना पीना नहीं रखते तो वो जिस्मानी बीमारियों में भी उन बीमारियों का शिकार हो चुके हैं कि जिनको को डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा। सच, छोटे छोटे बच्चों को अजीबो गरीब किस्म की बीमारियाँ। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने रमज़ान के महीने को चुना किस लिए? अगली आयत को देखेंगे, आयत नंबर 185, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया। क्या है क़ुरान? हुदल लिन्नास, हिदायत है लोगों के लिए, यानी जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है। वबैयिनातिम मिनल हुदा, और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली हैं। वल फुरक़ान, और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब क्या किया जाएगा? फ़मन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, पस जो शख्स इस महीने को पाए इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे। हाँ, लेकिन वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन, पस जो कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो, तो फ़ैदतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। ये आसानी क्यों मिली? इसलिए कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी का मामला करना चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और तुम्हारे साथ आसान सख्ती नहीं करना चाहता। और दूसरी वजह क्या है? वलितुक्मिलुल इद्दता, और ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुमको सरफराज किया है इस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी किबरियाई का इजहार करो। वलाल्लकुम तशकुरून, और शुक्रगुजार बन जाओ। काफ़ी लंबी आयत है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पीछे रोज़े के बुनियादी मसाइल की बात की गई। अब बताया जा रहा है कि रमज़ान का महीना सिर्फ़ इंसान के जिस्म के तकाज़ों को ही पूरे करवाने वाला नहीं, बल्कि रूह के तकाज़ों को पूरा करवाता है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान के महीने में क़ुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो ये रमज़ान के महीने में थी। इसलिए रमज़ान को शहरुल कुरान कहा जाता है। क्यों? आप लोग जब रोज़े की हालत में कुरान पढ़ते हैं और पेट भर के कुरान सुनते हैं, उसका फ़र्क होता है। चलें बाकी दूर को ना जाएं, आप अपने आप को देखें कि जो वक्त आपका ब्रेक से पहले का कुरान क्लास में गुज़रता है, और कुरान ब्रेक में अगर आप खूब समोसे पकोड़े खा लें, उसके बाद का जो वक्त है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जज्बीत कम होती है। अल्लाह ताला ने दो दस्तरखान इस ज़मीन पर रखे हैं, एक खाने पीने का, सब्ज़ी फल गोश्त सब जो हम खाते हैं, उससे चुन चुन के हम अपने जिस्म को पूरा करते हैं, उसके तकाजे पूरे करते हैं। लेकिन दूसरा दस्तरखान है क़ुरान के ज़रिए, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने क़ुरान को नाजुल करने के लिए रमज़ान के महीने का इंतखाब किया, क्योंकि जो क़ुरान खाली पेट समझ आता है वो वैसे नहीं आता। जिनके पेट बहुत भरे हुए हैं ना, उनको क़ुरान की तरफ आना अच्छा ही नहीं लगता, वो ख्वाहिश के बावजूद नहीं आते। आप देखिए कि कितने लोग हैं जो कुरान सीखना चाहते हैं, कुरान की क्लासेस में आना चाहते हैं, बाकायदगी चाहते हैं, लेकिन आप अपने में से अपने आप को चेक करें कि कभी भी जो आपकी छुट्टी होती है वो क्यों होती है? आप फील करेंगे कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक दावतों से है, शादियों से है, कोई ना कोई सोशलाइजिंग है, या फिर आप कुछ खा रहे थे या पका रहे थे, और कुछ नहीं तो बहुत खाने के बाद वैसे ही दिमाग मोटा होने लगता है, ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, कौन बैठे। फिर इंसान पे ये कैफियत आती है कि वो दुनिया की तालीम के लिए सात समंदर पार जाके भी सीख सकता है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं, कोई अंदेशा नहीं, लेकिन कुरान के लिए उसको हो सकता है 4 मील से आना भी मुश्किल लगे। अकेला इंसान दूसरे मुल्क में रह के सीख लेता है माँ बाप के बगैर, फिर अकेली लड़की दूर नहीं आ सकती। हर एक अपने हालात को चेक करें, हम सब अगर अपने आप को चेक करें कि जितनी कुर्बानियाँ हम दुनिया की तालीम के लिए देते हैं और देने को एजाज़ समझते हैं, क्या उतनी क्या उसके आधी भी कुरान को सीखने के लिए देना पसंद करते हैं? हम तो कुरान सिखाने के लिए निकल पड़े तो लोग हम पे एतराज़ शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, वो नहीं है। क्यों? कि उनको ये पता ही नहीं है कि जिस तरह खाना खा के बंदे का जिस्म सैराब होता है ना, इस तरह कुरान पढ़ पढ़ा के इंसान की रूह सैराब होती है। मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ कि हम कुरान की क्लास में बैठे, सुबह बैठे कि चले आज पहले तफसीर ही कर लेते हैं, पूरा वक्त गुजर जाए ना बीच में, मुझे तो नहीं लगती ना भूख ना प्यास, गला खुश को तो पानी पीना पड़ता है, वरना यकीन करें ना भूख ना प्यास। हो सकता है पढ़ाने से पहले कोई गम की खबर सुनी हो, पढ़ाने बैठे लगता है ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना गम। हो सकता है यहाँ आने से पहले कोई एक्साइटमेंट की बात सुनी हो, कोई बड़ी खुशी की खबर सुनी हो, आप कुरान पढ़ाने बैठते हैं ऐसे लगता है कि आपकी एक नई दुनिया हर दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, ये कुरान इतनी प्यारी चीज़ है कि जो बंदे को हर चीज़ से बेनियाज कर देती है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इसको रमज़ान में हम तक भेजा, ये असल में इस चीज़ का इशारा था कि अगर तुम भी कुछ करना चाहते हो ना, अब अगर तुमने भी ख्वाहिश कर ही ली है इस बात की कि मैंने भी अब इस कुरान की खिदमत करनी है, पहले सीखना है फिर सिखाना है, पहले खुद समझना है फिर दूसरों को साथ लेके चलना है, तो कुछ ना कुछ जिस्मानी तकाजों को कम करना ही पड़ेगा। कौन लोग हफ्ते में 2 दिन नहीं आ सकते इस क्लास में, जो बाकी 5 दिन जिस्म के तकाजों को पूरा करने कराने के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं? आप कभी सोचें, इज़ इट फेयर, जनरल बात करूँगी कि आप कभी सोचें सारी बातों को बेनियाज से बेनियाज हों, अकेले में बैठें, यानी आप में से हर एक सिद्रा बैठे, अस्मा बैठे, फरा बैठे, खतीजा बैठे, जो जो आप पे, और आप अकेली अपने कमरे में बैठ जाएं, चाय का कप ले लें, जैसे भी आप फोकस करें, और ख़ुद से पूछें मैं कौन हूँ, मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा, मैं यहाँ कब तक हूँ, अब जो मैं कर रही हूँ क्या उसमें और वापस अल्लाह के पास जाने के मामले में क्या मैं फेयर हूँ। देखिए, मैं मुतसब नहीं हूँ, मैंने ख़ुद भी पढ़ा अल्लाह की तौफीक से, और मुझे पढ़ने वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आप 5 दिन पढ़ें, 7 दिन पढ़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये सोच रख लेना कि दुनिया की तालीम ए बी सी डी या 1 2 3 4 या हम्टी डम्टी ट्विंकल ट्विंकल ये सीखने सिखाने जाते हैं ना स्कूलों में, 5 दिन 5 6 घंटे एक दिन के, ऐसे ही है ना, तकरीबन 40 आवर्स आर वीक बनते हैं जो हम दुनिया की सिर्फ तालीम, वो जो हम रेगुलर जाके सीखते हैं, फिर बाद में पढ़ना, होमवर्क, असाइनमेंट्स, वो बाद की बातें, और उसके बरक्स हम कुरान के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। आप सब तो हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, लेकिन मैं आम बात करती हूँ जो अभी तक कुरान के लिए सीरियस नहीं हुए लोग, जो सोचते नहीं अभी नहीं, अभी नहीं सीरियस हुए, अभी हम कर नहीं, सोचा तो था करेंगे कर नहीं सक रहे। इन दो में से भी अगर हमारी एक छुट्टी हफ्ते में हो जाए, कल क्या जवाब देंगे? देखिए, ये महीने की 8 क्लासेस है ना, और उधर हमारे पास महीने की 20 क्लासेस है, उधर 20 में से अगर आप यहाँ 8 क्लासेस में से हर हफ्ते में 3 छुट्टियाँ कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं, 50% छुट्टियाँ की, तो क्या आप अपनी रेगुलर तालीम में भी 50% छुट्टियाँ करने के बावजूद सीख सकते हैं? ये कैसी रौनक है कि जो हमें इस किताब की तरफ आने ही नहीं दे रही, हमारी गर्दन नहीं झुक रही, क्यों? कि हमें पता ही नहीं कि ये कुरान हुदा लिन्नास है, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएगी, ये तुम आपको लाइफ को मैनेज करना सिखाएगी, ये आपको एंगर मैनेजमेंट सिखाएगी, ये आपको ऑर्गेनाइज होना सिखाएगी, ये तो बय्यिनात मिनल हुदा, ये तो खोल खोल के हिदायत के, गाइडेंस के दलाइल पेश करेगी, ये है फुरकान, हक क्या है बातिल क्या है किससे पूछेंगे? सारी ज़िंदगी मौलवियों से पूछते रहेंगे, दर्स वालों को ढूंढते रहेंगे, क्यों हमारा दिल नहीं बताता हमें कि हक क्या और बातिल क्या है? क्यों हम तालीम इस हद तक नहीं ले लेते कि खुद ही पता लग जाए कि अब रोज़ा रखना है कि नहीं रखना, अब खाना है कि नहीं खाना, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हर वक्त क्यों क्वेश्चन आंसर सेशंस चलते हैं? मैं पूरे शौर से कहती हूँ कि लोगों को लेक्चर सुनने का इतना शौक़ नहीं होता जितना उनको सवालों का जवाब चाहिए होता है। अमूमन तीन किस्म के लोग आते हैं दरसों में। एक वो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की मोहब्बत में सीखने के शौक़ में आते हैं, दूसरे वो होते हैं जो चंद सवाल सोच के आते हैं कि चलो आज जाते हैं ज़रा चंद सवाल पूछते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो दुआ कराने जाते हैं, और ये ज़्यादा होते हैं, चलते हैं जाके दुआ करा लेंगे। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि लोग कभी शादी हो ना घरों में, कोई बच्चे बच्ची की शादी होती है तो उससे पहले दर्स रखवाते हैं, और चुपके चुपके जो मैसेज पहुंच रहा होता है ना वो क्या आता है, बस 10-15 मिनट फिर दुआ कराते हैं ताकि फिर आप जाए और हम मेहंदी शुरू करें। हमने तो लीगलाइज़ करानी थी शादी, अल्लाह को बता दिया कि हम तेरे नाम से शुरू कर रहे हैं और पता नहीं ख़त्म किसके नाम से करनी है। दुआ का बड़ा शौक़ होता है लोगों को, ये भी अच्छी बात है। चले ये तो पता है कि अल्लाह से ही मांगना है, लेकिन याद रखिए कि इस कुरान इस किताब को अल्लाह ने रमज़ान में नासिल किया। अच्छा हमारा हाल क्या है कि जब रमज़ान आता है ना हमारी सारी रूटीन ही बदल जाती है, कोई मुश्किल काम हम कर रहे होते हैं हम कहते हैं अब नहीं करेंगे, मसलन कुरान की क्लासेस है तो रमज़ान में नहीं लेंगे। आप नबी सल्लम की ज़िंदगी को देखें, बड़े बड़े मार्के रमज़ान में हुए। मक्का कब फतह हुआ? रमज़ान था। ग़ज़वा बदर कब हुआ? रमज़ान था। आप इस रब को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला के ही सारे महीने हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगियां जब तक रोज़े वाली ज़िंदगियां नहीं हो जाती तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तुम 313 होते हुए 1000 पे गालिब आ ही नहीं सकते अगर तुम्हारी ज़िंदगी रमज़ानी ज़िंदगी नहीं हो जाती। जो हर वक्त ही पेट पूजा करता रहे वो अल्लाह की पूजा कहाँ करेगा? जो हर वक्त ही रिश्तेदारों को पूछता रहे, जो दावतों को और हर अपने ज़ाती काम को करता रहे, आप बताइए कि उसके पास वक्त कहाँ बचेगा? तो लिहाजा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अब इससे तो ऐसे लग रहा है कि सारा कुरान रमज़ान में नाजिल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लोग सीरत पढ़े हैं उनको पता है कि तकरीबन 22 साल और 6 महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। 13 साल मक्का के, 10 साल मदीना के, तकरीबन 23 साल बनते हैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के जिसमें यह कुरान पाक हम तक पहुंचा था। तो फिर इसको हम ये क्यों कहते हैं कि रमज़ान में नाजिल हुआ? तो एक तो इसकी वजह आपको ये बता दी गई कि शुरू रमज़ान में हुआ था, दूसरी भी इसकी एक और मुफस्सरीन वजह देते हैं, थोड़े गौर से सुनने की बात है। अब देखिए कि ये एक आसमान जो हमें अपने ऊपर दिखता है ना, इसके ऊपर 6 आसमान और भी हैं। इमेजिन करें 7 हेवंस। जो 7वां आसमान है ना वहाँ है लोहे महफूज, आप कह लीजिए एक रैकेट कीपिंग बुक है या एक ऑफिस एक दफ्तर है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के होने वाले फ़ैसले सारे वहाँ लिखे हुए हैं, वहाँ पर कुरान पाक मौजूद था। ये भी लिखा हुआ था कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो अल्लाह ताला उन पर यह कलाम नाजिल करेगा। मुफस्सरीन कहते हैं कि रमज़ान में कुरान नाजिल कैसे हुआ कि लोहे महफूज 7th हेवन से ये फर्स्ट आसमान पे एट वंस रमज़ान के महीने में आ गया था, और उसके बाद इस पहले आसमान से इस दुनिया में 23 साल में आया। बात वाजे। सूरह क़द्र में भी इसको हम देखेंगे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी जब वहाँ पहुँचेंगे कि इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कदर वाली रात में पैदा किया नासिल किया। इससे ये भी पता चलता है कि उन ज़िला ऊपर से आया इस कुरान, इसमें एक बहुत बड़ा मुगालता दूर हो गया जो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से दिया जाता है आज के दौर में। वो कहते हैं ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, मोहम्मडन्स लॉस कहते हैं, लॉ कहते हैं इसको, उस दौर में भी कहते थे मक्का वाले। आप पढ़ेंगे मक्की सूरतों में आगे कहते थे मोहम्मद तो खुद ही लिख के आ जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा नहीं ये ऊपर से आया है। आया क्यों है? हिदायत के लिए, चुमने चाटने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपने आप को इस तरह से इसके साथ जोड़ लो और कर लो, बल्कि रिवायात में आता है कि बैतुल इज़्ज़त वो जगह है जहाँ पर इस कुरान को रखा गया। ये जो पहला आसमान है ना, वहाँ जिस जगह कुरान पाक को लोहे महफूज से रखा गया उस जगह का नाम है बैतुल इज़्ज़त, इज़्ज़त वाला घर। और हकीकत ये है कि जो बंदा इस कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है ना, इज़्ज़त उसके कदम चूमती है। शर्त क्या है कि आपके पास इखलास हो और आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस काम को करने की ख्वाहिश रखते हो। تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو رمضان میں نازل کر کے ہم سب کو یہ خوبصورت پیغام دیتے ہیں کہ تم نے بھی اب اپنی زندگی اسی طرح کی کرنی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں پر اس قرآن کو نازل کرے. اب دیکھیں آپ سبھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ پورے شوق سے سنتے ہیں, آپ سب کے سننے میں ڈیڈیکیشن میں بالکل مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, الحمدللہ بہترین اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت میرے سامنے. اس کے باوجود بھی بعد میں قرآن کے آگے آگے بڑھتے ہوئے یا اس کلاس سے نکل کے اگلی کلاس تک آنے کے بیچ میں, یہ جو بیچ کے دن ہوں گے نا, یہ آپ سب کے فرق ہوں گے. جس کا تعلق اس کلاس میں اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے نا قرآن سے کہ اس کو باقی بیچ کے چار پانچ دن یا دو دن یا ایک دن اگلی کلاس سے پہلے اس کو یہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں نا, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر قرآن کا اثر اور آئے گا. اور جو لوگ بس کہتے ہیں چلو شکر اللہ کا آج کی کلاس ختم ہوئی یا آئیں گے اگلے ہفتے میں, ان کا فرق ہوگا. اپنے دل کو اب آپ ایسے امیجن کریں, میں اس آیت کو پڑھا رہی ہوں تو میرے ذہن میں ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی جہاز ہے اور اس کو لینڈ کرنا ہے اور لینڈنگ کے لیے اس کو جگہ نہیں مل رہی. میں چونکہ ٹریولنگ کافی ہوتی ہے میرے پاس ہوتی ہے تو میں اس میں دیکھتی ہوں, ابھی بھی اس ٹریولنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک گھنٹہ ہمارا جہاز جو تھا وہ اوپر ہلکا ہلکا چلتا رہا کہ ان کو لینڈنگ کی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ ابھی رش تھا وہاں. اسی طرح کئی دفعہ جہاز چڑھنا ہوتا ہے اور جہاز میں بٹھا کے ایک ایک گھنٹہ وہ ویٹ کراتے ہیں کہ ابھی رن وے پہ رش ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ قرآن ایک جہاز کی طرح ہمارے دلوں کے اوپر منڈلا رہا ہے اور جگہ ڈھونڈ رہا ہے. خالی کرو اپنے دلوں کو, کیا کرنا ہے اس بیکار چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے کے. آپ جتنا اپنے دل کی دنیا کو خوبصورت کرتے جائیں, اپنے آپ کو پیور کریں, اللہ سے محبت کریں, آپ دیکھیں یہ پورے کا پورا قرآن آپ کے دل کے اوپر اترتا ہوا محسوس ہوگا. علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا, کہتے ہیں کہ ان کے باپ ان کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے اس قرآن کو ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل پہ نازل ہوتا تھا نا, بیچ میں جبرائیل علیہ السلام تھے پھر اللہ کا کلام آتا ہے. آج بھی اسی کو اس قرآن سے فائدہ ہوگا جو اس کو براہ راست اپنے دل پر لے گا, پھر اس کو فائدہ ہوگا, پھر آپ کی زندگی میں اتنی بہاریں آئیں گی نا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی کی سنی کہیں بات سمجھ کے اس کو لکھ لیں کہیں اور آپ فیل کریں گے ہر پارے کے ساتھ, ہر صورت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اس زمین کے نہیں آسمانوں کے راہی پائیں گے. آپ کو لگے گا پتہ نہیں کیا دولت ہے میرے پاس, پتہ نہیں میرے پاس کیا خوشی ہے, مجھے تو کوئی غم نہیں, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. یعنی واقعی پھر آپ کی ایک اپنی نئی دنیا بنے گی. یہ دنیا کے غم, فکر, تفکرات, بیماریاں اتنی چھوٹی لگیں گی آپ کو کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا مقصد ہوگا زندگی کا. تو یہ دن آپ کے بڑے قیمتی دن ہیں. جیسے بیج ڈالتے ہیں نا تو اس وقت اگر زمین گیلی ہوتی ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا گوڈی کر کے نرم کیا ہو تو بیج لگتا ہے تو پھوٹ جاتا ہے. یہ جو قرآن کی اس وقت آیتیں ہیں نا, یہ بیج کا کام دے رہی ہیں ہمارے اوپر. ہم اگر اس وقت اپنے دل کو نرم کر کے کھول کے سنیں گے نا, آپ دیکھیے گا کہ آپ سب کے دل میں الگ الگ بیج ڈلے گا. اور اگر یہاں بیٹھ کے بھی آپ کے اندر کوئی بڑائی کا احساس ہو, کبر ہو, اچھا کیا ہے امی نے بھیج دیا ہے, زبردستی ہے, مشکل ہے, انکار نہیں کر سکتے, تو پھر آ کے بھی کچھ نہیں ملے گا. بارش ہوتی ہے تو فرش گیلا ہوتا ہے, جو ہی بارش ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو سیمنٹ والا فلور ہے یا موزائک ہے وہ خشک کا خشک رہ جاتا ہے. تو اس قرآن کو اپنے دل پہ محسوس کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل کھلے گا. اور پھر کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں. اب دوبارہ رمضان کی طرف بات ہو رہی ہے اور آپ نوٹ کریں گے کہ بات رمضان کی ہو رہی ہے, پہلی چیز بیچ میں قرآن کی آ گئی اور اب دوبارہ رمضان کی طرف بات آ رہی ہے. کیوں؟ کہ رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ بندے کا تعلق جو ہے وہ بڑا خوبصورت جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ. پچھلی آیت نے آپ کو بتایا کہ رمضان کا حکم تدریجاً نازل ہوا تھا, وعلی الذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین, ٹھیک ہے, کہ شروع حکم یہ تھا کہ روزہ بھی رکھنا چاہو تو رکھ لو اور فدیہ دینا چاہو تو دے دو. لیکن یہ جو ٹکڑا اب ہم پڑھنے لگے نا, اس کو اب ہائی لائٹ کر لیں, یہ ہے فائنل حکم. آج کے دور میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, آبلیگیشن, اب لازم ہو گیا. अब चॉइस ख़त्म, मर्ज़ी से नहीं करना, बल्कि अब जो कोई तुम में से रमज़ान के महीने को पाए तो वो इसके रोज़े रखेगा। अब ये ऑप्शन नहीं रही, और रोज़ा फ़र्ज़ है। जो रोज़ा नहीं रखता वो पकड़ा जाएगा, जो रोज़े का इनकार करता है वो इस्लाम से निकल जाता है, उसका खून हलाल हो जाता है, यानी हुकूमत वक्त उसको मुर्तद होने की ज़िमन में कत्ल कर सकती है। जो ये कह दे कि मैं नहीं मानता रोज़े भी कुछ है, आज पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों की ज़ुबान से इस तरह की बातें निकलती हैं। कहा गया कि तुम ऐसी बातें कह के अपने दीन को ख़राब ना करना, अब तुम्हें रोज़ा रखना ही पड़ेगा। ये अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। फिर आगे आपको लगेगा कि तकरार है, लेकिन तकरार नहीं है। वक मन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़ायदतुम मिन अय्यामिन उखर। बस अब जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी करे। अब ये रेपिटिशन क्यों है? पहले गुजर गई ना, इसकी रेपिटिशन की वजह क्या है कि चूँकि पीछे ये हुक्म आया था तो शुबा पैदा हुआ कि अब रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं तो कहीं मरीज़ और मुसाफिर पर भी फ़र्ज़ ना हो गए हों। लिहाजा यहाँ मरीज़ और मुसाफिर का जिक्र करके उस एक्सेप्शन को बाकी रखा कि हैं फ़र्ज़, लेकिन मरीज़ और मुसाफिर पे वही बात है कि अगर नहीं रख सकता तो छोड़ दे, लेकिन बाद में पूरे कर ले। और ये आसानियाँ क्यों दी अल्लाह ताला ने? क्योंकि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानियाँ चाहता है। आप एक दफ़ा इमेजिन करें, अल्लाह ताला कर देता फ़र्ज़, कोई एक्सेप्ट, मरो या जियो रखना है रोज़ा, क्या हम में से किसी एक की ताकत थी इनकार करने की? हम ना रखते, हमारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला अगर ऐसा कह देता और ना रखने पे, हो सकता है हम रोज़ा ना रखते, उसी लम्हे कोई फरिश्ता आता हमारे सर पे ज़ोर से थप्पड़ मारता, मुमकिन है ना? कितना कुछ हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे सख्ती नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे पे उसकी वसत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। फिर आप देखिए कि पिछले लोगों के रोज़ों में और हमारे रोज़ों में फ़र्क भी बहुत सारा है। पहले दौर में क्या होता था, अब अगली आयत में उसका भी तस्कर आने वाला है, उसका जिक्र यहाँ कर देती हूँ। पहले दौर में रोज़ा लंबा होता था, बस मगरिब से ईशा के इन बिटवीन खा लो पी लो, जो भी ख्वाहिश पूरी करनी है कर लो, चूँ ही ईशा का वक्त शुरू हो जाता, या ईशा से पहले कोई अगर एक लम्हे में सो जाता तो फिर रोज़ा शुरू होता। आप कह सकते हैं 22 घंटे का रोज़ा था। तो अल्लाह ताला ने आसानियों का मामला किया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। आप कहते नहीं जी, हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है रोज़ा रखना, और ख़ास तौर पे जब 22 घंटे का रोज़ा आ जाता है गर्मियों में। इस पे भी बात कर लेते हैं कि रोज़े घूम फिर के दिनों में क्यों आते हैं, और इस पे बहुत डिटेल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सूरत तौबा में जाके मुश्रिकीन मक्का की एक रस्म थी नसी की, दिनों को बदल लेते थे। रमज़ान के महीने को उन्होंने हमेशा ही रमज़ान में गर्मी में रखने के लिए हर 3 महीनों के बाद एक महीना एक बढ़ा लिया करते थे, सिस्टम उनका बदलता था। और हज का महीना हमेशा वो सर्दियों में लाना चाहते थे ताकि बहुत सारे लोग तिजारत के लिए आएँ और उनकी तिजारत चलती रहे। हज उनके यहाँ बस एक किस्म का मेला बन चुका था और एक किस्म का एग्जीबिशन था, चारों तरफ से डेलीगेशन आते, चीज़ें बेचते, माल तिजारत इधर उधर होता, इस किस्म की बातें उन्होंने की। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। आप देखिए कि आप नॉर्वे में रहते हैं, और जो जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ का सोच ले। आप में से जो लोग इस साल रमज़ान में इधर थे, तो मेरा ख्याल है कि 18 से 20 घंटे तक का रोज़ा रहा है ना, क्योंकि शुरू रमज़ान में कुछ होता है और एक महीने के अंदर अंदर शायद 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है ना। अब आप कहते हैं कि जी, बहुत लोगों ने मेरे से भी सवाल पूछे थे कि इतना लंबा रोज़ा, 20 घंटे का रोज़ा क्या करें, ना रखें। कोई कहता है जी करीब के इस्लामी मुल्क में देख लें, कोई कहता है कि बस जी वो आप घड़ी देख के खोल लें। सुनते हैं ना बातें, मैं सोचती हूँ उस वक्त जब लोग ऐसी बातें पूछते या सोचते, मैं कहती हूँ हमारी इतनी जान क्यों निकल जाती है अल्लाह के हुक्मों को सुनकर। अगर आज आपने 20 घंटे का रोज़ा रखा और आपसे 4 घंटे दूर के मुल्क वाले लोग, हो सकते हैं कि 12 घंटे का रोज़ा रख रहे थे, आपसे अल्लाह ने 6 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए, दुआ करें अल्लाह आपको 33 ईयर्स की लाइफ दे दे, वो सारे साल वापस आ जाएंगे। आपको पता है 33 साल के अंदर अंदर एक बंदा पूरे साल में से गुजर जाता है। अगर आज आप 22 का रख रहे हैं तो आप अगर अपने घर वालों से पूछें या आप में से कोई शहादत देना चाहें कि उन्होंने रमज़ान के रोज़े यहाँ 6-6 घंटे के भी रखे होंगे, है कोई आप लोगों में से ऐसा? अब है ना, क्योंकि तब रमज़ान सर्दियों में आता होगा, अब गर्मियों में आता है। ये है, अल्लाह चाहते हैं हर मौसम में अल्लाह की इबादत करो, कभी लंबे रोज़े रखो, कभी छोटे रखो, कभी गर्मियों के रखो, कभी सर्दियों के रखो, घूम घूम के इबादत करो। ये मुमकिन था, कह दिया जाता हर साल दिसंबर में रोज़े हों क्योंकि सोलर कैलेंडर चेंज नहीं होता। लेकिन फिर आप ये बताएं कि अगर दिसंबर ही कर दिया जाता तो एक मुल्क के लोग तो दिसंबर के रोज़े रख लेते सर्दियों के, लेकिन आपको पता है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में शदीद गर्मी होती है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि सिर्फ नॉर्वे वालों को फ़ायदा दें या सिर्फ पाकिस्तान वालों को फ़ायदा दें या अमेरिका वालों को दें, पूरे ग्लोब को लेके चलना है। आज के कभी कहते हैं ना, कभी के दिन लंबे, कभी की रातें लंबी। अगर आज अल्लाह ने आपसे लंबा वक्त लिया तो कल छोटा भी तो देगा। आज सर्दियों के रोज़े, कल गर्मियों के रोज़े, कल कह सकोगे अल्लाह को कि अल्लाह तूने जब कहा हमने कहा, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो ली रब्बिल आलमीन। तो लिहाजा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम खुशियाँ मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, वली तुकमिलुल इद्दता, गिनती पूरी करो। ये ना सोचो कि नहीं रखने नहीं करने, शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने तौफीक दी, अब गिनती पूरी करो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो उसने तुमको हिदायत दी। ये जो वली तुकब्बिरुल्लाह का लफ्ज़ है ना, मुफस्सरीन का ख्याल है कि यहाँ ईद की तकबीरात की तरफ इशारा। रोज़े रख लिए, 29 रखे के 30 रखे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने तुम्हें ईद का दिन दिया तो वो जो सुबह उठ के तकबीरात पढ़ते हैं ना ईद के दिन, उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करो। हर नेकी के बाद फिर नेकी है, ईद का दिन भी अल्लाह की बड़ाइयाँ करने में गुजर जाए, ना कि अपनी बड़ाइयाँ बयान करने में गुजर जाए। अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें तौफीक दी, अलामा हदाकुम, किस चीज़ की हिदायत दी तुम्हें, रोज़े रखने की, तुम्हें कुरान पढ़ने की दी, तुम्हें अल्लाह की मर्ज़ी को मालूम करने की तौफीक दी। क्या तुम इसके बारे में शुक्र नहीं करते अल्लाह का कि उसने हिदायत दी? इससे क्या पता चलता है कि जब बंदे को हिदायत की नेमत मिले तो उसको अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए। देखिए हिदायत क्या है, हदिया, हदिया क्या है, तोहफ़ा, तोहफ़ा क्या है, कोई आपको दे तो आप क्या करते हैं उस पर, उसका शुक्रिया अदा करते हैं ना। बस आपकी भी ज़िंदगी में हिदायत के जितने सोते फूटते जाए ना, उतना आपकी ज़ुबान पे अल्लाह अकबर रहना चाहिए, थैंक यू अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें अगर आपको हिदायत मिल रही है ना, किसी को नहीं फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इंसानों की आदत है कि जब उनको कुछ मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। माँ से ज़्यादा कौन हरीस होगा अपने बच्चे को खैर देने वाला, लेकिन बच्चे से पूछे उसको अपनी सबसे बड़ी दुश्मन माँ लगती है, क्योंकि वो उसको गर्म बिस्तर से उठा देती है, उसको सर्दियों में बाहर भेजती है, उसको ब्रश करवाती है, उसको नहलाती है, उसके नाखून काटती है। जिस तरह बच्चा अपनी माँ की उस बात को नहीं समझ पाता ना, इसी तरह हम इंसान ख़ुद भी नहीं समझ पा रहे होते कि अल्लाह जो हमें इस किताब के ज़रिए दे रहा है उससे कल हमें क्या कुछ मिलने वाला है। हम कितने गलत तजुर्बात से बच जाएंगे, कितनी चोटें खाने से बच जाएंगे, कितने सुयर एक्सपीरियंसेस होने से बच जाएंगे। तो शुक्र करें आप लोग, ख़ास तौर पर आप देखिए कि जो बिल्कुल अर्ली टीन एज में, मसलन आप में से अगर कोई यहाँ 15 साल का बैठा हुआ है, कोई आप लोगों में से 15 ईयर्स, और 15 का कौन है, आप 15 की हैं, आप 15 की हैं, देखें कि आप सबको हम डिस्कस करते हैं। आपसे छोटा तो नहीं है कोई इधर, सबसे छोटा कौन है क्लास में जी, आप बताइए। हजरा कितने साल की है, 13 की हैं आप, 14, और चलें 13 का फिगर आया। आप सोचें कि आप सब इन पे देखिएगा, अभी रश करेंगे, 3 साल पहले आप बालिग हुई होंगी ना, सिर्फ 3 साल हुए हैं आपका नामा माल लिखना शुरू हुआ है अल्लाह ताला के हाँ, अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, पिछली ज़िंदगी तो गई। अब आप 13 साल में जो गलत काम, थोड़े बहुत छोटी मोटी बातें आप कर चुकी, अल्लाह ने आज ही आपको हिदायत दे दी कि आगे ना करना। अब आप लोगों का नामा अमाल क्या उस शख्स के बराबर हो सकता है जो यहाँ 30, 40, 50 साल की उम्र का बैठा है? मसलन अगर हमारे यहाँ इधर क्लास में कोई 30s में बैठा हुआ है, 30 लगा लें, 12 साल निकाल दें पीछे के, पीछे क्या बचा, 18 साल का नामा अमाल स्याह लेके बैठे हुए, तो क्या शुक्र कौन ज़्यादा करे जिसको अल्लाह ने मौका दे दिया। शुक्र करो अल्लाह ने बचा लिया, लिहाजा वला लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो, एतराफ़ करो, शुक्रगुजारियां करो, अल्लाह ने बचा लिया तुम्हें, तुम कितनों की आंखों की हवस का शिकार होने से बच गए, तुम कितनों को की तरफ जाकर अल्लाह को नाराज करने से बच गए, शुक्र करो। बाज़ दफ़ा जब छोटे यंग एज में बच्चियों को कहा जाता है दीन की तरफ आएं, और तो माओं को कहती हैं आपने खुद तो सब कुछ कर लिया, अब हमें पकड़ के ले आए आप कुरान की तरफ, तो माएँ बड़ी शर्मिंदा होती हैं इस बात पे कि बच्चे आगे से ये कहते हैं हाँ आप तो नमाज नहीं पढ़ती थी, अब हमें अभी से कह रही हैं पढ़ें। वो एक लतीफ़ा बल्कि याद आ गया, बाप जो था वो बच्चे को ताना देता था यही, मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ये करता था तुम कुछ नहीं बने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो ऐसा था मैं ये करता था तुम कुछ नहीं बने। खैर किस्सा मुख्तसर, जो बात उसमें से आखिर में याद रही, उसने अमेरिका के किसी सदर का नाम लिया, कहने लगा कि अब्बू ये बताएं कि फलां शख्स जो था, नाम याद नहीं मुझे इस वक्त, कहा कि ये बताएं कि वो जब 30 साल का था तो क्या था। तो बाप ने कहा कि क्या था, वो अमेरिका का सदर था। तो कहने लगा आप 30 साल के हो गए आप तो अमेरिका के सदर नहीं बने हैं। ये बात का एक खुलासा है जो टूटी हुई बात मैंने आपको सुनाई, कि बाज़ दफ़ा हम अच्छी बातें नहीं लेते, आप शुक्र करें कि अम्मी आपने वो काम नहीं किए मैं करके दिखाऊंगी, आपके अधूरे ख्वाब मैं पूरे करूंगी, आपकी जो गलतियां हुई उनको इंशाल्लाह मैं अल्लाह से माफ़ करवाऊंगी। तो वली तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की बड़ाइयां बयान करो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ठोकर खा के बचना चाहते हैं? कोई शख्स गाड़ी चलाए और उसको पहले से सेफ्टी प्रिकॉशंस दे दी जाएं ताकि उसका हादसा ना हो, हड्डी ना टूटे, टांग ना टूटे, गाड़ी ख़राब ना हो, वो अच्छा है या जो 10 दफ़ा गाड़ी ठोक के और 4 दफ़ा हॉस्पिटल में रह के आ चुका हो? यकीनन वो अच्छा है ना जिसको पहले पता चला। तो अब आप सोचें कि ये किताब हमें कितने सीवियर डेंजरस एक्सपीरियंसेस से बचा रही है। आपकी जो जिंदगियाँ शुरू हुई हैं इसमें तो माशरे में भेड़िए बैठे हुए हैं, कुछ सिर्फ चलते चलते आपकी तारीफ कर जाएगा और आप पिघल जाएंगे। आप सोचेंगे इससे ज़्यादा मेरा कोई मुखलस नहीं, आप माँ बाप के आगे खड़े हो जाएंगे कि मुझे तो बस यही लड़का पसंद है क्योंकि ये मेरी तारीफ़ करता है, बस आप चल पड़े। ये कुरान बताएगा कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या क्राइटेरियन है, किसकी बुनियाद पे लेना है। तो लिहाजा वला अल्लकुम तशकुरून, शुक्र अदा करो, ना फरमानियाँ ना करो, फरमा बरदारियाँ करो।